तब प्रश्न उठा कि भगवान में बुद्धि कैसे लगे। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, भगवान में बुद्धि लगाने का उपाय। भगवान में बुद्धि लगेगी कैसे, तो इसका सरलतम उत्तर है, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है उनमें अपनी बुद्धि को लगा दो, भगवान में बुद्धि लग जाएगी। जिनकी बुद्धि भगवान में लगी है उनमें बुद्धि लगा दो, तो वे क्या करेंगे, वे भगवान की कथा सुना करके तुम्हारी बुद्धि को भी संसार से हटाकर भगवान में लगा देंगे। यही उत्तर दिया है श्री जड़ भरत जी महाराज ने। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात। उन सत्पुरुषों के चरणों में जाने से क्या मिलता है, कहते उनके यहां ग्राम्य चर्चा होती ही नहीं है, संसार की चर्चा नहीं होती। उत्तम श्लोक गुणानुवाद, भगवान की ही बारंबार चर्चा उनके यहां होती है, और उसमें ग्राम्य कथा विघात, ग्राम्य कथा विषय की भोग की संसार की चर्चा का तो सर्वथा विघात कर दिया जाता है। वह संसार उनके वह चर्चा न उनके यहां कही जाती न सुनी जाती है। ऐसे जो महात्मा हैं, उन महात्माओं का जिनके यहां निरंतर भगवत नाम कीर्तन भगवत कथा श्रवण भगवान की सेवा पूजा आदि होती रहती है, भगवान का ही संबंध निरंतर जिनके यहां बना रहता है, कहते ऐसे महात्माओं का अनुदिन सेवन जो करेगा और मुमुक्षु, मुमुक्षु माने संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाला साधक, जब ऐसे महात्माओं का संग करेगा जिनके यहां ग्राम्य चर्चा का अभाव है और भगवत चर्चा भागवत चर्चा भगवान नाम की चर्चा जिनके यहां निरंतर होती रहती है, ऐसे संतों का संग करेगा तो मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे, वासुदेव भगवान में सती मती की प्राप्ति हो जाएगी। और जब बुद्धि सती हो जाएगी तो केवल भगवान में लगेगी, फिर संसार में नहीं लगेगी। और भगवान में बुद्धि लग जाएगी तो बस सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। संसार का जो सुख है वो कैसा सुख है, शंकराचार्य जी ने तो उस सुख को कहा दुखा भाव रूप सुख। दुखा भाव रूप सुख, दुख का थोड़ी देर के लिए अभाव हो गया इसी बात का सुख है। और मान लो जो सुख है भी वह शुद्ध सुख नहीं है। क्यों शुद्ध सुख नहीं है, इसलिए शुद्ध सुख नहीं है कि संसार के समस्त सुख, संसार के ही नहीं ब्रह्मलोक तक के जितने सुख हैं वे सारे सुख दुख मिश्रित सुख हैं। आज जब दुख से मिश्रित सुख हैं तो उनसे सुख कहां से मिलेगा, इसलिए दुख से रहित सुख क्या है, दुख से सर्वथा रहित सुख क्या है। जड़भरत जी कहते दुख से रहित सुख है भगवान में बुद्धि का लग जाना। बुद्धि का भगवान में लग जाना ये दुख से रहित सुख है। और ये देखा जाता है जिन संतों की बुद्धि निरंतर भगवान में लगी हुई है वे दुख मिश्रित सुख से भी मुक्त हो जाते हैं, उनकी स्थिति नित्य आनंद में हो जाती है, अखंड आनंद में उनकी स्थिति सदा सर्वदा के लिए हो जाती है, भगवान में उनकी स्थिति हो जाती है। देखो राजन, संसार में बुद्धि मत लगाओ, मैं राजा हूं, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, ये तो संसार की बुद्धि है, मैं केवल भगवान का हूं, इस भाव को स्वीकार करो। देखो तुम अपने को मान रहे हो कि मैं सिंधु सौबीर देश का राजा हूं, तुम तो केवल सिंधु सौबीर देश के राजा थे। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं तो भरत नाम का राजा था, ऋषभ देव का पुत्र भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा मैं भरत हूं। एक मृग का संग करने से, आसक्ति करने से मृगो भवम, मृगयोनि में पहुंचा, और मृगयोनि के बाद अब हमारा तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। और अब मुझे समझ में आ गया कि आसक्ति ही बंधन का मूल है, ये बात मेरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है, इसलिए लोक के संपर्क से सर्वथा मुक्त होकर मैं असंग होकर के विचरण कर रहा हूं। देख रहुगण, ये संसार बड़ा भयंकर जंगल है। इस भवाटवी में जीव भगवान की कृपा से आता है, कर्म धर्म की पूंजी लेकर के आता है, और जब यहां आता है तो इसमें बड़े बड़े डकैत हैं, काम क्रोध आदि ये बड़े बड़े डकैत हैं। इसके द्वारा बटोरी गई सुकृत रूपी संपत्ति को ये बटोर लेते हैं। जब इसके सुकृत का नाश हो जाता है, बड़ा दुखी होता है, सुखी नहीं होता, बहुत क्लेश इसे होता है, कभी सिंह की गर्जना, कभी हाथी की चिंगार, कभी भालू का भय, और अंत में भटकता भटकता इस जंगल में कई रास्ते इसको मिलते हैं। एक रास्ता चला और वो रास्ता अभी पूरा हुआ नहीं, उसमें से दूसरा रास्ता निकल पड़ा, उस रास्ते पे चला उसमें से चौथा रास्ता निकल पड़ा। इस सैकड़ों छोटे छोटे मार्ग बने होते हैं जंगल में, जंगली पशुओं के चलने के मार्ग होते हैं, और उन मार्गों में पड़कर ये बेचारा भटक जाता है। भटकते भटकते प्यास से व्याकुल होकर सोचता है कहीं एक क्षण का सुख मिले तो सही। उस सुख की तलाश में एक कुआं में झांकता है, ये अंधेरा कुआं है, इसमें पानी नहीं दिखाई पड़ता, पानी है भी नहीं, इसमें अंधेरा कुआं है, और इस कुएं के नीचे एक भारी काला नाग मुंह फैला के बैठा रहता है, फों-फों करता रहता है। लेकिन इस कुएं के पाट पर इसके सहारे से एक लगी हुई लता इस कुएं के भीतर लटकती रहती है। इस लता में एक शहद का छत्ता लगा हुआ होता है, उस छत्ते को देखकर मन में सोचता है कि अरे ये तो बड़ा मीठा है, इसका स्वाद क्यों न लिया जाए। अब छत्ता तो लटक रहा है कुआं के भीतर, कैसे स्वाद ले, तो एक लता, जिस लता में छत्ता लटक रहा है उसी लता में अपने पैरों को फंसाकर नीचे सिर करके लटक जाता है, अर्थात नीचे सिर ऊपर पैर इसके हो जाते हैं। तब वो पहुंचता है छत्ता के पास, छत्ता में होती हैं बड़ी बड़ी भयंकर मधुमक्खी, उनको देख के डरता है कि कहीं ये रूठ गई, इनको छेड़ दिया तो महाराज क्या दशा कर देंगे, नहीं कहा जा सकता, दुर्बल दास भी मोटे दास बन जाते हैं महाराज, मक्खियां नाराज हो जाएं तो दुबले पतले भी बिना किसी टानिक के इतने जल्दी मोटे हो जाते जिसका कोई ठिकाना नहीं, जहां खाएगी वहीं मोटा हो जाएगा। ग्वालियर के आगे एक हनुमान जी हैं जंगल में, डमरू वाले हनुमान जी, तो एक प्रेमी थे पधार गए, भगवत धाम चले गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज वहां एक डमरू वाले हनुमान जी हैं, बड़े बढ़िया हनुमान जी हैं, वहां चले हम लोग। कथा चल रही थी, कथा के बाद जब अवकाश मिला तो वहां पहुंचे, बहुत शांत सुरम्य स्थान जंगल में, बट का वृक्ष था, यहां कोई रहता नहीं, बोले यहां सिद्ध स्थान है, रात में कोई रह नहीं पाता है। हनुमान जी डबरू लेके नाच रहे हैं, बहुत प्राचीन विग्रह, वहां बहुत मिठाई लेके गए थे, लड्डू लेके गए थे, भोग लगाया और जैसी अगरबत्ती जलाई, भगवान क्या जाने, वो बट वृक्ष के ऊपर मक्खियों का छत्ता था बहुत बड़ा बड़ा, एक छत्ता टूट करके हनुमान जी की छत पर गिरा, अब तो लाखों मक्खियां, जो बेचारे सेठ साहूकार पैदल चलना जानते नहीं थे, दूर गाड़ी खड़ी करके आए थे, उनमें कहां से इतनी फुर्ती आ गई, वो दौड़ के कब गाड़ी में घुस गए पता नहीं, सब अपना सामान छोड़ के और मिठाई छोड़ के सब भागे, भाग के सब गाड़ियों में, केवल अकेले अपने राम पीछे रह गए, हम खड़े रह गए, हम कहीं कब जो होना हुआ सो होगा, भाग के जाएंगे काटेंगे मक्खी, खड़े हो गए, और गाड़ी चल रही है और मक्खियां पीछे चल रही है, फिर भी लोगों को काट गई और बहुत कष्ट हुआ, ठाकुर जी की दया से हमको तो किसी मक्खी ने नहीं काटा। बहुत देर के बाद मक्खियां शांत हो गई, वहां से प्रसाद बटोरा, एक गाड़ी आई उसमें लेके गए, तब महाराज वो यात्रा ऐसी हो गई कि अविस्मरणीय, लोगों ने कहा महाराज कोई गलती हो गई होगी, गलती कुछ नहीं हुई, हनुमान जी डमरू बजा के नाच रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये प्रेमी आए इनको भी नचाना चाहिए थोड़ा सा, तो हनुमान जी ने सबको नचा दिया डमरू बजा के। मधुमक्खी बहुत खतरनाक होती, बहुत खतरनाक, ये संसार का जो सुख है ना ये छत्ते का सुख है, मक्खी रुष्ट हो जाए फिर तो बहुत दुर्दशा हो जाती है। यह जीव उस लता के सहारे लटक जाता है और लटक करके उसमें से कुछ कुछ बूंद टपकती है शहद की, उनको जीव से चाटकर स्वाद का अनुभव करता है, और जब ये लटक के चाटने लग जाता है इधर दो चूहे, एक सफेद एक काला, दोनों चूहे उस लता की जड़ को काटने लग जाते हैं और जैसी जड़ कटी के वो धड़ाम से कुएं में गिर जाता। फिर कोई उसे बचाने वाला मिलता नहीं और बचे भी तो कैसे बचे, नीचे एक काल सर्प बैठा है वो उसको खा जाता है। इस तरह से जीव की दुर्दशा हो जाती है। इस भवाटवी से बचने का उपाय क्या है? बोले जंगल के रहस्य को जंगल में रहने वाले लोग जानते हैं, जंगली लोग जंगल के रहस्य को जानते हैं, उन्हें रास्तों का ज्ञान होता, किसी जंगली का हाथ पकड़ ले और धीरे से सुरक्षित मार्ग से चला जाए, ये इससे बचने का उपाय है। रहुगण बोला भगवान हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बोले देखो ये संसार ही जंगल है और जीव इसमें आता है, सारे सुकृत को गंवा देता है भोग करके सारे सुकृत को गंवा देता है और जो कुछ इकट्ठा करता है उसको काम क्रोध आदि दंभ लूट लेते हैं। अंत में ये अंधेरा कुआं क्या है? बोले गृहस्थाश्रम ही अंधेरा कुआं है और जीवन ही लता है, उस जीवन लता का आश्रय लेकर उल्टा लटक जाता है। विषय का सुख ही छत्ते का सुख है और जो चूहे हैं ये दिन रात हैं, ये दिन रात ही चूहा बन करके और उसको धीरे धीरे एक एक जड़ उसकी काटते रहते हैं। और नीचे जो सर्प है इसी सर्प का नाम है काल सर्प, इसी काल के मुंह में ये जीव चला जाता, संसार को भोगते भोगते काल के मुंह में चला जाता। प्यासा था, पानी के लिए कुएं में झांका, वहां मिला छत्ता, तो किसी प्यासे को दो बूंद चार बूंद शहद मिल जाए तो प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी, ये बात तो है ही है। और एक विशेष बात यह है कि जिसे प्यास न लगती हो वो शहद चाटना प्रारंभ कर दे तो उसे प्यास लगने लग जाती है। माने शहद में प्यास बुझाने वाला गुण नहीं है, शहद जितनी चाटोगी उतनी तीव्र प्यास बढ़ती चली जाएगी। तो वो प्यासा जीव तृषा की शांति के लिए गृहस्थाश्रम में झांकता है, प्यास वहां बुझती नहीं है, विषय की मधु चाटने पर और ज्यादा प्यास उसकी बढ़ जाती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। और अब इस जंगल के भेद को समझने वाले कौन है? बोले इस भवाटवी के भेद को समझने वाले हैं महात्मा, ये शरीर और संसार का भेद समझ जाते हैं, ये रहस्य को समझने वाले जो महात्मा हैं, ये जानते हैं रास्ता। कौन सा रास्ता? देखो छोटे छोटे रास्ता बताए, ये छोटे छोटे रास्ता क्या है? पशुओं के द्वारा बनाए ये रास्ता, भगवान से विमुख प्राणी पशु के तुल्य है। दम्भिन निजमत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ, दम्भिन निजमत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ, जिमि पाखंड बाधते लुप्त हो सदग्रंथ। सब लुप्त हो गए, तमाम लोग आश्वासन देते हैं हमारे पीछे चल के आओ, हम तुम्हारी समाधि लगा देंगे, कुंडलिनी जगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, एक मिनट में भगवान से मिलिए, लोग बोर्ड टांग देते हैं और सब पैसा वसूलते रहते हैं लोगों से। एक शिविर लगा कुंडलिनी जागरण का, बहुत से लोग गए, 500 रुपए उसने फीस की एक व्यक्ति की। एक अपने परिचित भी एक वहां पहुंचे तो हमने उनसे पूछा ध्यान समाधि लगी कि नहीं लगी, हमारे मन में भी उत्सुकता हो रही जानने की। बोले महाराज हम तो पैसा खर्च करके आए हैं, कोई दूसरा पूछता है तो हम तो कहते हैं समाधि लग गई, लेकिन आप पूछ रहे हो तो सच्ची बात ये बताते हैं, बड़ी बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया वातानुकूलित कक्ष हॉल, सब बढ़िया, गद्दा लगा के बैठ जाते हैं और अस कक्ष में अंधेरा कर देते हैं, एक छोटा सा प्रवचन होता है, फिर सब भावातीत ध्यान करते हैं। क्या होता उसमें? समाधि लगी? बोले हाँ, नींद बहुत अच्छी आती है। कई कितने लोग तो हमारे पास बैठने वाले खर्राटे लेने लग जाते हैं। ये बात जरूर है कि वहां सब शांत वातावरण हो जाता है और कुछ करना सुनना है नहीं तो बस नींद आ जाती है। और तो महाराज हम कई दिन बैठे, हमको कोई न ध्यान लगा न हमारी कोई समाधि लगी। असली बात है ये, भजन करने से कल्याण होगा, मन लगे या न लगे राम नाम लेने से लाभ होगा। और समाधि के नाम पर घंटों आंख बंद करके बैठे और यदि चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं होगा। भगवान के भजन की क्रिया निष्फल नहीं है। एक नमस्कार भी भगवान के चरणों में जो किया गया है श्रद्धा पूर्वक, वह नमस्कार भी व्यर्थ नहीं है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामे दशाश्वमेधा ववृथेन तुल्यम, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भगवान के चरणों में कोई प्रणाम करे तो भगवान के चरणों में किए गए प्रणाम की क्या महिमा है। कहते दस अश्वमेध यज्ञ करके अभवृत स्नान करे उसका फल और एक बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने का फल बराबर है। ये पद्म पुराण का श्लोक है। व्यास जी सावधान हो गए, बोले नहीं नहीं, किसी लौकिक कर्म से भगवान की भक्ति रूप कर्म की तुलना करना अपराध है। तो कहते नहीं, दस अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा फल है एक प्रणाम करने का, क्योंकि दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, दस अश्वमेध करने वाला स्वर्ग में जाकर फिर पुनर्जन्म प्राप्त करेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान के चरणों में प्रणाम करने वाला पुनः संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ेगा। तो भगवान की भक्ति के मार्ग में एक भी साधन निष्फल नहीं है, इसलिए महाविश्वास पूर्वक भगवान की भक्ति रूप साधना करनी चाहिए। भक्ति योग के द्वारा भगवान की उपासना करना चाहिए। तो संसार के रहस्य को जानने वाले कौन है? महात्मा। ये ठेका नहीं लेते हैं कि हम जानते हैं, ये कहते हैं संतों ने बताया है, शास्त्र में यह बात कही गई है, गीता में ऐसी बात है, रामायण में ऐसी बात है, भागवत में ऐसी बात है, सुखदेव जी ने यह मार्ग बताया है और इस मार्ग पर चलकर लाखों जीव भगवान तक पहुंच चुके हैं, हम भी इसी मार्ग पर चल रहे हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। इस पद्धति से ये महात्मा ले जाते हैं। इस भवाटवी में एक राजमार्ग है, इस राजमार्ग का नाम है भक्ति मार्ग। ये पगडंडी नहीं है, ये राजमार्ग है। इस राजमार्ग पर होकर चलते हैं और बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हुए चलते हैं। इसमें बड़े बड़े सुंदर बगीचे हैं, ये भगवान के सुंदर सुंदर चरित्र, भगवान के सुंदर सुंदर धाम तीर्थ क्षेत्र, यही इसमें सुंदर सुंदर उद्यान हैं और इसमें राम कथा मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है, श्री कृष्ण कथा मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है, यही इसमें दिव्य कथा की रसधारा अमृत धारा बह रही है। यहाँ कुआं में नहीं झांकना पड़ेगा, यहाँ तो खूब डूब करके रस पियो, खूब गंगा जी में गोता लगाओ और खूब गंगा जी का शीतल जल पियो, आनंद ही आनंद रहेगा। और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर मयूरों के नृत्य हो रहे हैं, ये प्रेमियों के भगवान नाम संकीर्तन में जो नृत्य हैं यही मयूरों के नृत्य हैं। और इस मार्ग में जो सुंदर सुंदर बगीचे हैं ना, इनमें कोयल बोल रही हैं और इसमें तोता बोल रहे हैं। कोयल कौन है? कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। सामान्य कोयल नहीं है, वाल्मीकि महर्षि ही कोयल बन करके श्री राम चरित्र का गायन कर रहे हैं। इस मार्ग में एक तोता है, बड़ा मीठा बोलता है, कौन? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये सुखदेव रूपी शुक इस रस को पीने की आज्ञा देता, पिबतो पियो, ऐसी रसधारा बह रही है इस मार्ग में। और बस प्रेम से भगवत लीला का नाम रूप लीला धाम इनका अनुभव करता हुआ वो चला जाता भगवत धाम, भगवान के निकट पहुंच जाता है, इस राजमार्ग पर चल करके निकट पहुंच जाता है। हाँ, इस राजमार्ग में दो घाटियां जरूर हैं कठिन, एक घाटी का नाम है कंचन और दूसरी घाटी का नाम है कामनी। ये कंचन कामनी रूपी दो घाटी जरूर हैं, ये दो घाटियां भी पार हो जाती हैं। अच्छी से अच्छी भयंकर घाटी हो, किसी सबल का सहारा मिल जाए तो उसका हाथ पकड़ के ऊंची से ऊंची घाटी चढ़ी जा सकती है। ये समर्थ जो संत हैं, यही इस घाटी से पार उतारने वाले सबल सहारे हैं। बस इनका मजबूती से हाथ पकड़ लो और पकड़कर ये खींचते चले जाएंगे और कंचन और कामनी वाली घाटी भी पार हो जाएगी। ये घाटी पार हो जाने के बाद फिर साक्षात श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो नूराबाद के लिए चलेगा, छूराबाद पहुंच जाएगा। श्री बक्सर वाले महाराज जी, श्रीमन नारायण जी महाराज बक्समाली जी, एक अपनी घटना सुनाते हैं। ग्वालियर के पास में करह है, करह पटिया वाले बाबा बड़ी सिद्ध जगह है। तो बताते कि एक बार करह से चले, घोर जंगल था, करह से चले तो रास्ता भटक गए, कई साधु थे, रास्ता भटक गए, रात हो गई, अब कुछ नहीं मिले, कहां जाएं, वो पगडंडियों में ही भटक गए जंगल में। तब तक एक किसान मिला, किसान से कहा कि भैया हम लोग भटक गए रास्ता, कहां जाना है आप महात्मा, वो आपको कहां जाना है? बोले हमको नूराबाद जाना है, उधर रोड पर ही एक गांव है, शहर है, उसको नूराबाद कहते हैं, नूराबाद जाना है, वहां एक तपसी जी करके सिद्ध हो गए, उनके मंदिर पर जाना था, तो नूराबाद जाना है। तो किसान बोला बाबा ये नूराबाद का रास्ता नहीं, ये छूराबाद का रास्ता है, क्योंकि भिंड मुरैना का क्षेत्र तो चोर डकैतों का क्षेत्र है, ये छूराबाद का रास्ता है, ये आपके ठाकुर बटुआ और लोटा लंगोटा भी छीन लेंगे यहाँ के लोग, अब क्या करें? बोले नूराबाद तो बहुत अलग चला गया, आप तो यहाँ जंगल में भटक गए, क्या करें? बोले अब हमारे पीछे चल के आओ, हम तुम सबको ठीक रास्ता पर पहुंचा देंगे। तो कहते वो ऐसे रास्तों से लेके गया वो व्यक्ति कि तुरंत उसने रोड पहुंचा दिया, कहा देखो ये रोड है, इसको मत छोड़ना, और वो टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिख रहा है, वो नूराबाद का प्रकाश चले गए। कहते हमको रास्ता बता के चला गया, भगवान जाने कौन सा, हम लोग पहुंच गए। तब समझ में आया भागवत के इस भवाटवी का रहस्य कि जीव चलता है नूराबाद के लिए, नूर माने रूप, आवाद हो रहा है जहां, श्री ठाकुर जी की मंगलमयी झांकी का दर्शन करने के लिए जीव चलता है, और ये काम क्रोध आदि जो डकैत हैं इनके जंगल में फंस करके छूराबाद के रास्ते पर पहुंच जाता है। तब कोई संत ही आकर मिल जाते हैं तो वो सही रास्ता दिखाते हैं और कहते देखो वो नूराबाद है, वहां चले जाओ, तुम्हारा काम बन जाए। कहते हमको ये भवाटवी का रहस्य उस दिन समझ में आया, उनके मुख से सुनी हुई बात। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः संसार में सत्पुरुष का आश्रय ले लेना चाहिए। मान लो कथनचित कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में ऐसा विश्वास जम चुका है कि आज के युग में कोई सत्पुरुष नहीं है, हो सकता ऐसे भी, वैसे ये बात है नहीं, आप में पात्रता होगी तो आपको संत बहुत मिलेंगे, लेकिन कथनचित कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको कोई घटनावश दुर्घटनावश ऐसी स्थिति उसके चित्त की बन चुकी है, वो कहता महाराज इस युग में कहां कोई साधु है, कहां कोई संत है, जिसके पास जाओ वही ठगने की कोशिश करता, क्या करें? ऐसे लोग भी कल्याण कर सकते हैं। कैसे? बोले भाई तुमको आज के संतों में श्रद्धा नहीं है, गीता तो भगवान की वाणी है, इसमें श्रद्धा है कि नहीं? तुलसीदास जी में श्रद्धा है कि नहीं? सुखदेव जी में श्रद्धा है कि नहीं? इन संतों की ग्रंथों का पारायण करो, ग्रंथ को ही गुरुदेव मान लो, ग्रंथ को ही पदप्रदर्शक मान लो, और रामचरितमानस का कोई श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है तो श्री तुलसीदास जी से सत्संग करता है, भागवत जी का कोई पाठ करता है तो सुखदेव जी के साथ सत्संग करता है, गीता का पाठ कोई करता है श्रद्धा पूर्वक तो वो साक्षात श्री कृष्ण के साथ सत्संग करता है। ऐसी श्रद्धा से सदग्रंथों का पाठ करें, उन ग्रंथों को न पढ़ें जिनको पढ़ने से वेद में अश्रद्धा हो जाए, ईश्वर में अश्रद्धा हो जाए, गौ ब्राह्मण में अश्रद्धा हो जाए। ऐसे ग्रंथ और ऐसे सत्संग, इनसे बचकर के सदग्रंथों का आश्रय लें। सदग्रंथों का आश्रय और भगवान नाम का दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से जप, बस ये दो कार्य कोई करे तो इस भवाटवी के मार्ग से मुक्त हो जाएगा। अर्थात किसी न किसी पूर्ववर्ती संत को आचार्य मान करके साधन करे तो भी उसे भगवत प्राप्ति होती है। एक संत हो गए हैं भरतपुर जिले में, झारकड़ी का जंगल है और झारकड़ी जंगल में भजन करके सिद्ध हो गए श्री राधे श्याम बाबा। 1 अरब नाम का जप उन्होंने संख्या पूर्वक किया था, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका 1 अरब जप किया था उन्होंने। और सेवा कुंज में प्रत्यक्ष महाराज का दर्शन प्राप्त किया था, उनका नाम था बाबा सीताराम दास। और राधा रानी ने दर्शन दिया और कहा बाबा अब तू राधे श्याम है जा, तब से वे राधे श्याम बाबा हो गए। बड़े सिद्ध संत थे, गिरिराज जी में वे विराजे और गिरिराज जी में ही उन्होंने देह का त्याग किया, बड़े उच्च कोटि के संत थे। उनका अनुभव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ साधकों के देखने योग्य ग्रंथ है, अनुभव वाणी है उनके, पद हैं बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, कबीर जी से मिलती जुलती वाणी है उनकी। अब इस युग के संत थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 50 साल हो गई होगी ज्यादा से। तो राधे श्याम बाबा ने अपने अनुभव को खुद लिखा है अपने ग्रंथ में, और उन्होंने लिखा है कि हमने विवेक पूर्वक जब हमें कोई गुरु नहीं मिला तो मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरु मानकर रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ किया, और श्री रामचरितमानस के जब 108 पाठ निष्काम भाव से पूर्ण हुए तो श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया और अपनी भुजा पर बिठाकर हमको सद्य चित्रकूट का दर्शन कराया ऐसा। और इसके बाद तुलसीदास जी का भी उनको दर्शन प्राप्त हुआ और तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है तुम्हारा रास्ता बढ़िया है और अब अमुक संत से विधिवत संस्कार ले लो। तो जिन संत के लिए उन्होंने संस्कार लेने की आज्ञा दी उन संत से उन्होंने संस्कार प्राप्त किया और फिर वे महान सिद्ध संत। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे भी संत हुए हैं जो कहीं गए नहीं, उन्होंने किसी एक संत में श्रद्धा करके उसे मान लिया जो इस धरती पर भी नहीं थे और उनके प्रति श्रद्धा करके वे साधन में लग गए तो वे आगे बढ़ गए और उनको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। इसलिए मुख्य बात है मुमुक्षा, आपको छूटने की इच्छा है कि नहीं। छूटने की इच्छा होगी तो कोई न कोई मार्ग मिलेगा और छूटने की इच्छा नहीं होगी तो जीवन भर चर्चा करने पर भी मार्ग मिलने पर भी उसमें गति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहली बात है संसार की भोगों की असारता को जानकर इससे छूटने की इच्छा अपने भीतर उत्पन्न करे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से रहुगण का कल्याण हो गया। श्री जड़भरत जी के संबंध में श्री शुकदेव जी वर्णन करते हैं, आर्षभस्य राजर्षेर मनसापि महात्मना नानुवर्तमा अर्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः। जैसे मक्खी गरुड़ जी की बराबरी नहीं कर सकती ऐसे ही भरत जी के ज्ञान का, इनकी भक्ति का, इनके वैराग्य का की बराबरी संसार का कोई दूसरा साधक नहीं कर सकता है। संसार में भोग बड़े दुस्त्यज हैं, फिर जो चक्रवर्ती सम्राट हो और जिसे सब कुछ मिला हुआ हो वो छोड़ दे ये तो बहुत बड़ी बात है। दुस्त्यजान यो दुस्त्यजान दारसुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः जहौ युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसः। भगवान की प्राप्ति के अभिलाषा में संसार की समस्त वस्तुओं को मलवत त्याग दिया, मल के समान इन्होंने त्याग दिया। 2 तरह का त्याग है, एक तो मलवत त्याग और दूसरा बांतवत त्याग। संसार को 2 प्रकार से छोड़ना चाहिए, या तो मल के समान छोड़ दे, मल के प्रति द्वारा फिर दृष्टि उधर डालने में भी घृणा होती है, ऐसे ही संसार को छोड़ने के बाद द्वारा दृष्टि डालने में भी घृणा का अनुभव हो, एक तो ये, और दूसरा वांतवत त्याग, उल्टी के समान, बमन के समान। बमन वाला त्याग और ज्यादा अच्छा है, मल के प्रति उतनी घृणा नहीं होती जितनी बमन के प्रति घृणा होती। बमन के समान संसार का त्याग करने पर भगवत प्रेम मिलता है। ये बमन के समान त्याग कौन लोग कर पाते हैं, जो भगवान में जिनका प्रेम हो गया। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़भागी। वे बड़भागी नर बमन के समान त्याग देते हैं। बोलो श्री भरत जी महाराज की। भरत जी का बड़ा पवित्र वंश हुआ और कहते ये प्रियव्रत का परम पवित्र वंश, इसका श्रवण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष इस वंश में प्रकट हुए। श्री परीक्षित जी ने इस भुवनकोश ब्रह्मांड के संबंध में प्रश्न किया है और श्री सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है, भूगोल खगोल का वर्णन किया है, गंगा जी का विवरण किया है और गंगा जी के संबंध में कहा है कि श्री गंगा जी की चार धाराएं पृथ्वी पर आती हैं ब्रह्मलोक से, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें सीता, चक्षु और भद्रा ये अन्य पृथ्वी के भागों में जाती हैं, अन्य द्वीपों में, और अलकनंदा नाम की धारा वे पृथ्वी पर प्रवाहित होती हैं, ये श्री गंगा जी के रूप में आज भी प्रवाहित हैं। बड़ी सुंदर इनकी शोभा है। कहते हैं कि इन गंगा जी में स्नान की क्या महिमा है, गंगा, यमुना, सरयू, शतद्रु, विपाशा, वेत्रवती, कई नदियों को गिना, कावेरी, इन नदियों को गिना करके कहा कि इन नदियों में जो श्रद्धा पूर्वक स्नान के लिए जाते हैं तो स्नान यस्याम, यह अलकनंदा नाम की गंगा भारतवर्ष को सुशोभित करती भई, दक्षिण श्याम दिशिम जलधिम अभिप्रवसति, यह समुद्र में आकर के मिलती है, दक्षिण समुद्र में मिलती है। कहते जिस गंगा में स्नान के लिए जाने वालों के लिए पदे पदे स्वमेध राजसूयादीनाम फलम न दुर्लभम इति, गंगा स्नान के लिए जब कोई व्यक्ति चलता है तो अपने घर से जो चला है तो प्रत्येक कदम पर उसको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। अब जो लोग यहां गंगा जी के तट पर आए हैं और साथ एक साथ दो गंगाओं में स्नान करने का अवसर मिल रहा है, एक भागीरथी गंगा और एक कथा गंगा, चरित्र सुधा गंगा, तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये हमारे किसी पुण्य का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। भगवान ने, हम इस लायक नहीं थे, भगवान ने बड़ी कृपा करके हम सब जीवों को और गंगा के तट पर बैठ करके गंगा स्नान नित्य करते हुए और कथा गंगा में अवगाहन का अवसर दिया है। तो अब आप सोचिए, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई उत्तर से, बहुत दूर दूर से लोग यहां आए हैं। अब वहां से यहां तक कितने कदम होंगे, तो कितने यज्ञ हो गए, कोई गिनती है? प्रत्येक पद पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता। बोलो गंगा मैया की। भारतवर्ष में बड़े बड़े पवित्र पर्वत हैं, उन पर्वतों में कोंकट, बैंकट, जिसको बैंकटाचल कहते, कोंकट, बैंकट, मलय, सहिय, मेरु, मंदर, सुपार्श, चित्रकूट, कामदगिरी और गोवर्धन, रैवतक आदि आदि पवित्र यहां पर्वत हैं। गोवर्धन और चित्रकूट दो पर्वतों का भी नाम आया है। ये दो पर्वत पर्वत नहीं हैं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवान हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं भागवत में कहा, शैलोस्मीति ब्रवन भूरी बलि मादद बृहद बपु, भगवान ने खुद कहा शैलोस्मी, मैं ही गिरिराज हूं। ऐसे ही कामदगिरी साक्षात भगवान श्री राम का ही स्वरूप है। महारामायण में लिखा है कामदगिरी पर्वत शालग्राम स्वरूप है। शालग्राम स्वरूप होने के कारण आज भी कामदगिरी पर कोई चढ़ता नहीं है। गिरिराज गोवर्धन शालग्राम स्वरूप हैं, इसलिए उन पर चढ़ते नहीं है, परिक्रमा करते हैं, उनको बचा करके परिक्रमा करते हैं, उन पर चढ़ा नहीं जाता। कि कामदगिरी शालग्राम स्वरूप है। कामदगिरी वे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामदगिरी की बड़ी महिमा है। कामदगिरी ढिंग डेरा दीजे सुखद अर्ध रात्रि मह बैठ सिलन पर सुखद शांत रस पीजे। कामदगिरी ढिंग डेरा दीजे, आज भी वहां अनुभूतियां होती हैं और श्री गिरिराज जी में भी आज भी अनुभूतियां होती। तरहटी गोवर्धन की लहिए तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए। तरहटी श्री गोवर्धन की लही, वाल्मीकि महर्षि तो चित्रकूट के संबंध में कहते हैं कि चित्रकूटस्य श्रृंगाणि नरो यावन निरीक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मना। परम कल्याणानि बहुवचन है, कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मना। गिरिराज का दर्शन, कामतानाथ का दर्शन करने मात्र से जीव की बुद्धि निष्पाप हो जाती। बोलो गिरिराज महाराज की, श्री कामतानाथ भगवान की जय। जय श्री राधे। भूगोल खगोल का वर्णन किया है, भगवान शेष के मस्तक पर ये पृथ्वी सरसों के दाने के समान रखी हुई। सिद्धार्थ इव संलक्षिते, 1000 फण हैं और ये पृथ्वी सरसों के दाने के समान रखी हुई। भगवान शेष भगवान के नामों का जप करते हैं, 2000 जिह्वाएं हैं और 1000 मुख हैं। सर्प के मुख में एक दो दो जीव होती ना, एक एक मुख में, तो शेष भगवान की 2000 जिह्वाएं हैं और 1000 मुख हैं। निरंतर नाम का कीर्तन करते रहते हैं और 1000 नाम रोज नए लेते हैं, 1000 नाम रोज नए लेते हैं। शेष भगवान कब से हैं, कब तक रहेंगे, ये तो शेष हैं, शेष माने बचा हुआ, ये अविनाशी भगवान के अंश हैं। भगवान ने भागवत में स्वयं कहा है, शेषाख्यम धाम मामकम, यह शेष मेरा ही धाम है, मेरा ही स्वरूप है। ये शेष भगवान, ये शेष भगवान अनंत काल से भगवान के नाम ले रहे हैं, अनंत काल तक लेते रहेंगे और 1000 नाम रोज नए लेते हैं, फिर भी भगवान के नामों का पार नहीं। इतने भगवान के नाम है। जब भगवान शेष नाम कीर्तन करते हैं तो उनको इतना स्वाद आता है कि उनके मुंह में लार आने लग जाती है, स्वाद के कारण। कोई स्वादिष्ट चीज देख के मुंह में पानी आ जाता कि नहीं, तो नाम लेते लेते इतना स्वाद मिलता है कि मुंह में उनके लार आ जाती है। अब लार गिरने लग जाती है तो टपकती हुई लार को वो समेटते नहीं, भागवत में लिखा है, टपकती हुई लार को वो समेटते नहीं है। क्यों? बोले जब तक लार समेटेंगे तब तक भगवान का एक नाम छूट जाएगा। तो नामोच्चारण के लोभ के कारण वो टपकती हुई लार को समेटते नहीं है, कहते लार टपकती है तो टपकने दो। कहते ना महापुरुष लोग, कहते ये फैक्ट्री है लार की, कफ की, निकलने की, मलमूत्र की फैक्ट्री है, निकलता निकलने दो, हम राम राम करना क्यों छोड़े। ओ मरा लार टपकती है, टपकती हुई लार को वो बटोरते नहीं है, कहते बहती है तो बहने दो, राम राम क्यों छोड़े। और वो भजन करते रहते हैं, वह लार झरकर अमृत बन जाती है, अमृत का कुंड बन जाता है और उस अधरामृत को सनकादिक सिद्ध पान करते हैं तो नाम के प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लग जाते हैं। शंकरषण भगवान शेष जी, नारद जी शेष भगवान की स्तुति करते हैं। इन शेष भगवान ने एक बार सत्संग की महिमा को भी प्रकट किया था। एक समय की बात है, वशिष्ठ और विश्वामित्र में विवाद हो गया। विवाद तो पुराना ही था, बाद में सुलझ गया था, लेकिन एक नया विवाद छिड़ गया। वो ये था कि विश्वामित्र जी के यहाँ वशिष्ठ जी पधारे तो विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्ष की तपस्या भेंट कर दी और वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र पधारे तो उन्होंने एक घड़ी के सत्संग का फल भेंट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत चतुर हो, हमने 10,000 वर्ष की तपस्या भेंट की, तुमने एक घड़ी के सत्संग का फल भेंट किया। एक घड़ी का क्या है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तपस्या श्रेष्ठ है, सत्संग श्रेष्ठ नहीं है। विवाद छिड़ गया, निर्णय कराओ, कौन निर्णय करेगा। अब इतने तगड़े महात्माओं को निर्णय कोई कमजोर व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, कोई भारी भरकम चाहिए निर्णायक भी। दोनों में विचार हुआ, बोले निर्णय कौन सही करेगा, बोले शेष जी निर्णय करेंगे, शेष जी के पास चलो। दोनों महात्मा पाताल में पहुंच गए, बोले शेष जी आप हमारा एक फैसला कर दीजिए, सत्संग श्रेष्ठ है कि तपस्या श्रेष्ठ है। हमने इन्हें 10,000 वर्ष की तपस्या भेंट की और इन्होंने एक घड़ी का सत्संग भेंट किया, तो एक घड़ी का सत्संग श्रेष्ठ है कि 10,000 वर्ष की तपस्या श्रेष्ठ है। शेष जी ने बहाना बना दिया, बोले देखो ऐसा है कि जिसके मत्थे पे कोई वजन रखा हो वो बढ़िया किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, हमारे ऊपर ब्रह्मांड का भार है, हम कैसे उत्तर दें। पहले आप दोनों में से कोई एक इस भार से हमको मुक्त कर दो, तो फिर खुले दिमाग से हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। विश्वामित्री बोले कोई बात नहीं, मैं अपने तपोबल से इस पृथ्वी को धारण करता हूं। तो जैसे वो पृथ्वी को तपोबल से धारण किया तो सही उन्होंने अपने मस्तक पर, लेकिन कांपने लग गए, व्याकुल हो गए, पृथ्वी डगमगाने लगी, पृथ्वी लेते उनसे नहीं बनी। तब वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को धारण किया। संपूर्ण तपस्या का बल लगा देने के बाद भी पृथ्वी धारण वे नहीं कर सके। और वशिष्ठ जी ने कहा यदि सत्संग सबसे श्रेष्ठ है, वह एक घड़ी का सत्संग यदि अनंत जन्म की तपस्या से भी श्रेष्ठ हो तो ये पृथ्वी स्थिर हो जाए। ऐसा कहती उन्होंने सहज भाव से पृथ्वी को रोक लिया, शांत भाव से खड़े हो गए। अब विश्वामित्री जी बोले कि महाराज अब तो आप भार से मुक्त हो गए, हम नहीं साध पाए पृथ्वी, हमारे भैया वशिष्ठ ने साध लिया, अब तो आप बताएं। शेष जी हंसने लगे, बोले तुमको समझाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया, कहते अब समझाओ। अब समझाना बाकी रह गया, यदि तपस्या श्रेष्ठ होती तो तुमने पृथ्वी को धारण कर लिया होता। सत्संग श्रेष्ठ है, तपस्या से तेज का अर्जन तो होता है लेकिन चित्त की शुद्धि वैसी नहीं होती। सत्संग से जैसी चित्त की शुद्धि होती, सत्संग के द्वारा चित्त में काम क्रोध आदि विकार नष्ट होते हैं, चित्त विशिष्ट शुद्ध होता है, इसलिए सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। यह श्री शेष भगवान ने सिद्ध किया। बोलो शेष जी महाराज की। इस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, इन 9 वर्षों में अलग अलग भगवान स्वरूप से विराजते हैं। भद्रास्व वर्ष में भगवान विराजते हैं, हयग्रीव रूप से विराजते हैं, और भद्रस्रव नाम के देवता भगवान की स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनाय नम इति, इस मंत्र से भगवान की स्तुति करते हैं। और भगवान की स्तुति करते हुए एक विशेष बात करते हैं भद्रास्तवा। अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम घनंतम जनोयम ही मिशन न पश्यति ध्यायन न सज्जर ही विकर्म सेवितुम निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। हे भगवान, आपकी माया बड़ी विचित्र है, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। इस माया के कारण ही यह जीव संसार को संहार करने वाले काल की ओर नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए अपने जीवन का विनाश कर देता है, पापमय विचारों की उधेड़बुन में लगा हुआ है। कहते पुत्र अपने पिता की लाश जलाकर भी यह नहीं सोचता कि हमको भी ऐसे ही जलना पड़ेगा। निरहत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति, पिता का संस्कार करने के बाद पुत्र जीवित रहना चाहता और पुत्र का संस्कार करने के बाद पिता जीवित रहना चाहता है, भजन नहीं करना चाहते। ये भगवान आपकी विचित्र माया है और इस माया से बचने का एक ही उपाय है, यह जीव आपकी शरण ग्रहण कर ले, आपसे संबंध बना ले, यही माया से मुक्ति का उपाय है। हरिवर्ष में भगवान नृसिंह रूप से विराजते हैं, प्रहलाद जी यहाँ के पुजारी हैं और भगवान के मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस तेज से आविराविर्भज वज्रख वज्रदष्ट कर्मा श्यान रंधे रंधे तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभय मभय मात्मनि भूष्ठा ओम श्रोम। इस मंत्र का जप श्री प्रहलाद जी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्य हेतुकी। हे भगवान, विश्व का कल्याण हो, विश्व कल्याण की कामना करने वाले पहले संत हैं प्रहलाद जी। ये धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये जो 4 सूत्र हैं ये प्रहलाद जी की स्तुति से ही प्रकट है। प्रहलाद जी कहते हैं स्वस्तिस्तु विश्वस्य, विश्व का कल्याण हो, सब जीवों का कल्याण हो, किसी का बुरा ना हो। खलह प्रसीदताम, दुष्ट प्रसन्न हो जाए, दुष्टों का विनाश हो, ये नहीं कहते दुष्ट प्रसन्न हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है, दुष्ट जब तक दुष्टता रूपी कर्म में लगे रहेंगे तब तक वे प्रसन्न होने वाले नहीं, अर्थात दुष्टों की दुष्टता समाप्त हो जाए, वे भी महात्मा बन जाए, वे भी संत बन जाए, ये श्री प्रहलाद जी की कामना है। इसलिए भगवान को तो प्रभु कहते हैं और भक्त के रूप में भगवान अवतार लेते तो महाप्रभु कहते हैं। भगवान दुष्टों का नाश करते हैं और संत दुष्टों का नाश नहीं करते, दुष्टों की दुष्टता का नाश करके उन्हें भी महात्मा बना देते हैं, उन्हें भी भक्त बना देते हैं, उन्हें ही संत बना देते हैं। ये प्रहलाद जी की भावना, कहते दुष्ट भी नष्ट न हो, इनकी दुष्टता नष्ट हो जाए, ये भी सज्जन बन जाए। हे भगवान, हमारा मन कल्याणकारी संकल्प करे, हम सबकी बुद्धि आप में लग जाए, स्त्री पुत्र में आसक्त लोगों में प्रेम हमारा न हो, भगवान के भक्तों में हमारा प्रेम हो। इस प्रकार से स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपका निष्काम प्रेम जिसके हृदय में विराजमान है, उसमें सारे सद्गुण विराजमान हो जाते हैं। क्यों? निष्काम प्रेम जिसके हृदय में विराजमान होता है, असंख्य कल्याण गुणगण निलय भगवान उनके हृदय में अटल होकर के विराजते हैं, और भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, तो वे सारे गुण उस भक्त के भीतर प्रकट हो जाते हैं। भगवान के समस्त गुणों का आविर्भाव भक्त के हृदय में हो जाता है, तो निरंतर भगवान को धारण करता है तो भगवदीय गुण उसमें आ जाते हैं, एक गुण भगवान से ज्यादा आ जाता है। आप लोग कहेंगे कि भगवान के गुण तो असंख्य हैं, अनंत हैं, फिर एक गुण कौन सा है जो भगवान में नहीं और भक्त में आ जाता है? इस गुण को हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा है, इस गुण का नाम है पुरस्कार। पुरस्कार माने होता सिफारिश। भगवान किसी की सिफारिश नहीं करते। क्यों? सिफारिश सदा अपने से बड़े के पास की जाती, और भगवान से बड़ा कोई है नहीं, तो वे सिफारिश किसके पास करें? लेकिन सबसे बड़े भगवान हैं और मैं भगवान का दास हूं, ये भाव भक्तों के हृदय में बना रहता है, तो वे भक्त भगवान से जीवों के उद्धार की प्रार्थना करते रहते हैं। ये जीवों की उद्धार की प्रार्थना भक्त करते हैं, ये गुण भगवान में नहीं है, ये गुण भगवान से भी ज्यादा भक्त में है। इसलिए कितने भक्त ऐसे हुए हैं जो भगवान से प्रार्थना उन्होंने की कि हे भगवान, आप बार बार पीछे पड़े हो कि हमें उनसे कुछ ले लो ले लो ले लो, ऐसा करो, सब जीवों को माया से मुक्त कर दो। भगवान का तो होशी बिगड़ गया। भगवान बोले, अरे भाई, तुम हमारे सब खेल को खत्म करना चाहते हो, ऐसा मत करो। प्रहलाद जी ने भी यही कहा, आप ज्यादा वरदान देना चाहते हो तो भागवत की स्तुति में सप्तम स्कंध में वर्णन है, संसार चक्र कदनात गृहताम प्रणीता, मुझे अपने दुख से दुख नहीं है, ये बेचारे जीव संसार के दुख में फंसे भये हैं, इनका कल्याण हो जाए, इन सबको आपकी प्राप्ति हो जाए। भगवान बोले, प्रहलाद जी हो तो जाए, पर ये हमारी प्राप्ति नहीं चाह रहे हैं। बोले, मत चाहे, अब तो करुणा में जबरदस्ती मिल जाइए। बोले, ऐसे जबरदस्ती हम नहीं मिलते हैं, किसी को तैयार कर लो हमारे साथ चलने के लिए। प्रहलाद जी सोचते थे कि कोई ना कोई, जब हम कहेंगे घोषणा करेंगे तो हजारों लोग तैयार हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने घोषणा की, एक भी व्यक्ति नहीं आया। तब प्रहलाद जी घर घर जाके कहने लगे, चलो वैकुंठ, कोई तैयार नहीं हुआ। एक बुढ़े से कहा कि तुम्हारा घर में बड़ा अपमान होता, तुम चलो। बोला, अरे तुमको क्या पता, हम बहुत काम के हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, कुत्तों को भगाते रहते, भिखारियों को डांटते रहते हैं, घर में किसी को घुसने नहीं देते, और रात को नींद नहीं आती, खांसते रहते हैं, चोरों को पता चलता घर में कोई जग रहा है, तो दिन रात चौकीदारी करते हैं हमको वैकुंठ जाने की जरूरत। संत तो यहां तक कहते हैं कि प्रहलाद जी ने सोचा है, मनुष्य बड़े अभागे हैं, चलो पशु को ले चले। सब पशुओं ने मना कर दिया, तो सबसे घृणित पशु सूकर बिष्टा भोजी नाली में लूट रहा था। प्रहलाद जी बोले, चलो तुम वैकुंठ चलो, आज भगवान ने दया का भंडार खोल दिया है, कहते जो चलना चाहे सो चल, तुम चलो। उसने कहा, भाई चलता तो सही में वैकुंठ, लेकिन एक बात बताइए, क्या? बोले, वहां नाली लूटने को मिलेगी कि नहीं? अरे नारद जी ने कहा, मूर्ख कहीं के, वहां नाली कहां, वहां तो तेरा ये रूप नहीं रह जाएगा, दिव्य रूप हो जाएगा। कहते हमें तो जो नाली में लौटने में सुख मिलता है, और अपनी भोज्य वस्तु को खाने में जो सुख मिलता है, लगता वैसा सुख अन्य कहीं नहीं है, हम तो नहीं जाएंगे। प्रहलाद जी उदास होके आ गए। नृसिंह भगवान बोले, क्यों उदास हो? महाराज आपकी माया बड़ी विचित्र है, कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्या करें? भगवान बोले, देखो हम प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, भागवत में लिखा है, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते, भगवान ने कहा हे प्रहलाद, तुम्हारा स्मरण जो करेंगे और हमारा स्मरण जो करेंगे वे कर्म बंधन से छूट जाएंगे, आशीर्वाद होगा। तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है। रंतिदेव नाम के भक्त ने तो भगवान से कहा कि सार इन सब जीवों को आप मिल जाइए, सब जीवों को आपकी प्राप्ति हो जाए, नमस्कंद में इनका चरित्र, सब जीवों को आपकी प्राप्ति हो जाए। भगवान बोले इनके बहुत पाप हैं, ये कर्म का फल कौन भोगेगा। तो रंतिदेव जी ने कहा आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम, संसार के जितने शरीरधारी हैं उनके समस्त पाप कर्मों को मैं अकेले भोग लूंगा, हमको अकेले को नरक डाल दीजिए, अरब खरब वर्ष तक नरक में पीड़ा दीजिए, लेकिन इन जीवों को मुक्त कर दीजिए। ये दया जो संत के हृदय में होती है और ऐसी प्रार्थना जो भगवान के दरबार में जीवों के उद्धार की करते हैं, ये गुण भगवान से ज्यादा है संत में। इसलिए तो भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, झूठ थोड़ी बोलते राम जी, मोते अधिक संत कर लेखा, क्योंकि अधिक इस अंश में है, हमारे में पुरस्कार नहीं और इनमें पुरस्कार है। श्री किशोरी जी की महिमा समस्त वैष्णवों ने क्यों स्वीकार की, कृष्णोपासकों में श्री राधा रानी की महिमा, श्री रामोपासकों में श्री किशोरी जी की महिमा और श्री नारायण उपासकों में लक्ष्मी जी की महिमा, ये क्यों स्वीकार की गई। बोले इनमें प्रिया जी में पुरस्कार का गुण है, जीव के भूल को सुधारती हैं और भगवान से इसकी सिफारिश करती हैं। गोस्वामी जी कहते कबहू का अम्ब अवसर पाए, कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधि ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए, कबहू का अम्ब अवसर पाए। अवसर पाकर क्यों, आप तो प्राणनाथ जीवन धन की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं, कोई एक मौका लगे तो कछु करुण कथा चलाए, ऐसी कोई प्रसंग चलाना जानबूझ करके, किसी ने किसी प्रसंग में हमारा नाम आ जाए तो वे पूछेंगे कौन है ये व्यक्ति जिसका तुम नाम ले रही हो। अरे महाराज बड़ा दीनहीन है, बड़ा मलिन है, बड़ा क्षुद्र है, आपका है महाराज, आपका है, बहुत व्याकुल है, आप उसे मिल जाइए। इसलिए युगल उपासना में श्री जी की महिमा ज्यादा है, क्योंकि श्री जी ठाकुर जी से मिलने में जीव का बहुत बड़ा सहयोग करता है, इनकी करुणा सबसे विलक्षण है। एक पंजाब का व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम था किशोरी, सर्प के काटने से पत्नी की मृत्यु हो गई और वो व्यक्ति पागल हो गया। पागल तो कहीं भी चले जाते पागलपन में, वो घूमते फिरते मथुरा पहुंचा और मथुरा से घूमते घूमते बरसाना पहुंच गया। अब बड़ी जोर से चिल्लाता था, पागल को धुन सवार होती, किशोरी 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 कह रहा। श्री ललताजी विचरण कर ललताजी के साथ श्री जी विचरण कर रही थी अष्ट सखियों के साथ। तो किशोरी जी ने कहा कि ललिते ये बड़ा भोरा भक्त आया है, निरंतर मेरे नाम की रट लगाता रहता है, चलो इस भगत से पूछे कि क्या दुख है क्या कष्ट है। ललिता जी ने कहा कि स्वामिनी जी आप तो बड़ी भोरी हैं। अरे ये पागल है, अपनी पत्नी का नाम ले लेके रो रहा है, इसकी पत्नी का नाम था किशोरी, उसका नाम ले लेके रो रहा है। श्री प्रिया जी ने कहा ललिते ऐसा क्यों कह रही, इसकी प्रिया क्या किशोरी हो सकती है, संसार की कोई स्त्री किशोरी हो सकती है, वो बालक भई किशोर भई फिर बूढ़ी होगी फिर मरेगी, नित्य किशोरी तो मैं ही हूं, सदा किशोर अवस्था में रहने वाली तो मैं ही हूं, इसलिए किशोरी शब्द का अर्थ होता है राधा, ये मुझे पुकार रहा है। जब बेटे के बहाने से नारायण नाम लेने वाले का कल्याण हो सकता तो बहू के बहाने से किशोरी नाम लेने वाले का कल्याण नहीं होगा क्या। चलो अष्ट सखियों के साथ किशोरी उसके सामने ये दानगढ़ पे बैठ के चिल्ला रहा था किशोरी किशोरी किशोरी, किशोरी जी सामने आ गए, दर्शन करते निहाल हो गया, चरणों में गिर गया। और ऐसा वहां के संत लोग बताते हैं ये करुणा है, किस बहाने से किस ब्याज से जीव के ऊपर कृपा कर दें, ये करुणा जो जीवों के प्रति है वह करुणा होने के कारण विशेष रूप में। रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी जी बाएं नहीं रहती, दाहिने रहती हैं। क्यों? बोले यज्ञ कर्म में पत्नी दाहिने अंग में होती है, ऐसा विधान है। तो भगवान एक यज्ञ में दीक्षित हैं, उस यज्ञ का नाम क्या है? प्रपन्न जन परित्राण रूप यज्ञ, शरणागतों की रक्षा रूप यज्ञ में भगवान दीक्षित हैं। और उस यज्ञ में प्रधानता किशोरी जी की है, वे दाहिनी ओर बैठ करके जीवों को पकड़ पकड़ के भगवान के चरणों में डाल रही हैं। ये भाव है उनके यहाँ, इसलिए उनके यहाँ वाम दिश में नहीं लक्ष्मी जी को, दाहिनी ओर लक्ष्मी जी को विराजमान किया जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री प्रहलाद जी कहते भगवान के प्रति जिसका निष्काम प्रेम है, सारे सद्गुण उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके चित्त में कोई सद्गुण आ नहीं सकता। इस प्रकार से केतुमाल वर्ष में भगवान की स्तुति करते हैं लक्ष्मी जी, रम्यक वर्ष में हरिमा स्तुति करते हैं कच्छप भगवान की, और इसके बाद किमपुरुष वर्ष में भगवान श्री राम विराजते हैं, हनुमान जी स्तुति करते हैं, उत्तर कुरु में यज्ञ पुरुष विराजते हैं, पृथ्वी देवी स्तुति करती हैं। हनुमान जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपका यह राम रूप शरणागतों को शरणागति प्रदान करने वाला और जीवों के ऊपर परम कृपा करने वाला है, देखो तो सही। न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर नाकृति तोष हेतु तैर्यद विशिष्टानपि नो बनौ कसस चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा। हे प्रभो, आपकी करुणा बड़ी विलक्षण है, हमारा जन्म उत्तम कुल में नहीं हुआ, हम तो बंदर हैं, कोई सौभाग्यशाली गुण हमारे भीतर नहीं है, हमारी वाणी भी अच्छी नहीं है, हमारी आकृति भी अच्छी नहीं है, हमारी बुद्धि भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बंदरों को आपने अपना सखा बना लिया। दास नहीं, हम तो दास बने लेकिन आपने सखा बना लिया, अपनी बराबरी पर बिठा लिया, अपने से भी ऊपर पहुंचा दिया। तो हे भगवान, ऐसे आप महापुरुष हैं, ऐसी आपकी दया है, जब आप बंदर भालुओं को अपना सकते हैं तो कोई मनुष्य आपकी शरण में जाए तो आप उसे क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। भारतवर्ष के देवता नर नारायण हैं, जिनके चरणों में हम लोग बैठे हैं। ठीक इधर उत्तर दिशा की ओर भगवान बद्री नारायण विराजमान है, गंगा जी उन्हीं के चरणों से निकल के आ रही, वहीं से चल के गंगा जी आ रही। बद्री नारायण भगवान यहाँ के देवता हैं, और जो श्रद्धा पूर्वक बद्री नारायण का दर्शन करने जाता है, भगवान की तपस्या में से उसे छठा अंश प्राप्त हो जाता है, ऐसे भगवान दयामय हैं। इनके पुजारी हैं श्री देवर्षि नारद जी महाराज, और नारद जी इनकी पूजा करते हैं। आज भी जब मंदिर बंद होता है तो नारद जी ही पूजा करते हैं, ऐसी मान्यता है। और कितने संतों ने देवर्षि नारद जी का अनुभव भी किया है। श्री स्वामी पार्वती करजी महाराज वीणा बाबा बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, उन्होंने दास को स्वयं बताया कि बद्री नारायण में विराजते थे, तो उन्होंने कहा कि हमको बद्री नारायण में जब मंदिर बंद हो जाता है, बर्फ जम जाती है, उस काल में जब हम रहे तो हमको दो अनुभव हुए, एक तो गरुड़ जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और देवर्षि नारद जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, दो दर्शन उनको हुए, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे वीणा बाबा। अभी यहां स्मृति महोत्सव भी संगीत का दो दिन का उनका मनाया गया। हरिशरणम बद्री नारायण में भजन करते हैं श्री नारद जी, और स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? श्रवण करने योग्य स्तुति है। श्री बद्री नारायण भगवान की सेवा करते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि यथै हि कामुस्मिक काम लंपट सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन संकेत विद्वान कुकले वरात्ययाद्यस्तस्य यत्नश्रम एव केवलम। जैसे अहलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि की चिंता करने के कारण मृत्यु से घबराता